आमाल नवा बाब। और साउल जो अभी तक खुदावंत के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, ख्वा मर्द ख्वा औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी के
ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है?
उसने पूछा,
ऐ खुदावन, तू कौन है?
उसने कहा,
मैं यसु हूं जिसे तू सताता है, मगर उठ, शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा।
जो आदमी उसके हमराह थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते न थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ न दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। और वो 3 दिन तक न देख सका और न उसने खाया न पिया। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था, उससे खुदावन ने रोया में कहा कि
ए हननिया।
उसने कहा,
ऐ खुदावन, मैं हाजिर हूं।
खुदावन ने उससे कहा,
उठ, उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तुर्सी को पूछ ले, क्योंकि देख, वो दुआ कर रहा है और उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर बीना हो।
हननिया ने जवाब दिया कि
ऐ खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले।
मगर खुदावंद ने उससे कहा कि
तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा।
बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा,
ए भाई साउल, खुदावन यानी यसु, जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया जाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बिनाई पाए और हुलकुद से भर जाए।
और फौरन उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और फौरन इबादत खानों में यसु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे,
क्या ये वो शख्स नहीं है जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उनको बांध कर सरदार काहिनों के पास ले जाए?
लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत दिन गुजर गए तो यहूदियों ने उसे मार डालने का मशवरा किया, मगर उनकी साजिश साउल को मालूम हो गई। वो तो उसे मार डालने के लिए रात दिन दरवाजों पर लगे रहे, लेकिन रात को उसके शागिर्दों ने उसे लेकर टोकरे में बिठाया और दीवार पर से लटकाकर उतार दिया। उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की और सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको यकीन न आता था कि ये शागिर्द है। मगर बरनबास ने उसे अपने साथ रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया कि इसने इस तरह राह में खुदावंद को देखा और उसने इससे बातें की, और उसने दमिश्क में कैसी दलेरी के साथ यसू के नाम से मुनादी की। बस वो यरूशलेम में उनके साथ आता जाता रहा और दलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था, और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगु और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के दरपे थे। और भाइयों को जब ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसुस को रवाना कर दिया। बस तमाम यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई, اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر چلتی اور بڑھتی جاتی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ پترس ہر جگہ پھرتا ہوا ان مقدسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدہ میں رہتے تھے۔ وہاں اینیاس نام ایک مفلوج کو پایا جو 8 برس سے چارپائی پر پڑا تھا۔ پترس نے اس سے کہا،
اے اینیاس، یسوع مسیح تجھے شفا دیتا ہے، اٹھ، آپ اپنا بستر بچھا۔
وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ تب لدہ اور شارون کے سب رہنے والے اسے دیکھ کر خداوند کی طرف رجوع لائے۔ اور یافا میں ایک شاگرد تھی، تبیتا نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک کام اور خیرات کیا کرتی تھی۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالاخانے میں رکھ دیا۔ اور چونکہ لدہ یافا کے نزدیک تھا، شاگردوں نے یہ سن کر کہ پترس وہاں ہے، 2 آدمی بھیجے اور اس سے درخواست کی کہ
ہمارے پاس آنے میں دیر نہ کر۔
پترس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب پہنچا تو اسے بالاخانے میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئیں، اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ میں رہ کر بنائے تھے دکھانے لگیں۔ پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی، پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا،
اے تبیتا، اٹھ۔
بس اس نے آنکھیں کھول دیں اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور مقدسوں اور بیواؤں کو بلا کر اسے زندہ ان کے سپرد کیا۔ یہ بات سارے یافا میں مشہور ہو گئی اور بہتیرے خداوند پر ایمان لے آئے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بہت دن یافا میں شمون نام دباغ کے ہاں رہا۔